اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا. چلیے اب ہم پارہ نمبر 10 کو بک میں سے پڑھیں گے. سب بک کھول سکتے ہیں اپنے سامنے، اور بک کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نوٹس نہیں لیں گے. آپ اپنی بک پہ ہی سائڈ نوٹس لیا کریں، انڈیکس پیپرز لگا سکتے ہیں، جو باتیں ایکسٹرا بتائی جاتی ہیں اس کو نوٹ کریں، جو چیزیں بک میں ہوتی ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، تاکہ بعد میں یہ بک آپ کی ورک بک بن چکی ہو اور ایکسرسائز بک ہو. کتاب کے اعتبار سے ہمارا بک میں جو پیج ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کھول لیجئے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پورے پارے میں کس طریقے سے دکھاوے کے موضوع کو ڈسکس کیا گیا. چلیے کتاب کے حساب سے پیج نمبر 161، پارہ نمبر 10، اور ہم تذکرہ سیریز میں اس پارے کو دیکھیں گے بتر، جس کو اردو میں ہم دکھاوا کہہ سکتے ہیں. اس کی روشنی میں سورۃ انفال کی آیت 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اپنی شان دکھاتے اور اتراتے ہوئے نکلتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اصل میں تو وہ غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے، دھوم دھام سے نکلے تھے، ہتھیار سجا کے نکلے تھے. اشارہ ابو جہل کے اس لشکر کی طرف ہے جو اصل میں ابو سفیان کے لشکر کی مدد کے لیے نکلا تھا، اور حالانکہ اس کو پیغام مل چکا تھا کہ قافلہ خیریت سے بچ کے نکل آیا، اب تم نہ آؤ. لیکن جب اپنی بڑائی دکھانے کا شوق ہوتا ہے تو کل کے لوگ میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے کہ کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، جیسے کہ آج کے دور میں بھی ہمارے کچھ ایسے ہی میدان ہیں. بہت ہی معذرت، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک بات کہوں گی، جب بھی یہ آیت قرآن پاک کی میرے سامنے آتی ہے، اس آیت کو پڑھنے کے فوراً بعد دل میں ایک خیال ضرور آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس دھوم دھام سے دکھاوا کرتے ہوئے اپنے آپ کو سجا سنوار کر اور اپنی بڑائی دوسروں کے دلوں پہ بٹھانے کی خواہش اور تمنا لیے ہوئے وہ میدان جنگ میں نکلے تھے، آج ہم براتیں لے کر نکلتے ہیں. جب ہم کسی بھی شادی کے لیے تیار ہو کر اکٹھے ہو کر نکلتے ہیں تو کیا ہماری کیفیت اس آیت کی طرح تو نہیں؟ وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح سے جو اپنے گھروں سے نکلے دکھلاتے ہوئے، اتراتے ہوئے، شو آف کرتے ہوئے، پمپ اینڈ شو، گلیمر دکھاتے ہوئے. نیت کیا تھی؟ وریان ناس، لوگوں کو دکھانا، دکھاوا. اور اصل میں ہوتا کہ ایسے کلچر سے جب یہ کلچر عام ہوتا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روک رہے تھے اللہ کے رستے سے. یاد رکھیے، آج ہماری شادیوں اور ہمارے ایسے ایکسپوجر اور ہمارے ایسے پمپ اینڈ شو نے بہت ساروں کو اللہ کے راستوں سے روکا ہوا ہے. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے. تو ذرا سا بات میں اس پہ غور کریں گے ہم بھی، کہ کہیں ہم بھی ایسے موقع پہ ہمسا کوئی ہو تو سامنے آئے والی کیفیت میں تو نہیں ہوتے. دیکھیے، دکھاوا ایک ایسا مرض ہے جس نے پچھلی امتوں کو بھی اپنے پکڑ میں لے لیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے میں نے اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اندر کہیں دکھاوا نہ آ جائے. تو ہم دیکھیں گے کہ بتر اس پارے میں کہاں کہاں ہے. یاد کیجئے پچھلے پارے کے اینڈ پہ سورۃ انفال جب شروع ہوئی، یسلونک عن الانفال، یہاں سے سورۃ انفال شروع ہوئی تھی. پہلا سوال یہ اٹھا تھا کہ انفال کیا ہوتا ہے، مال غنیمت کیا ہے، اور یہ سوال ان کو اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے بالکل درست تھا. لیکن 46 آیتیں گزرنے کے بعد جواب دیا جا رہا ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، دسویں پارے کی پہلی آیت، علم لو، جان لو. وہاں توجہ کس بات پر کی تھی؟ یاد کیجئے وہ چار نقطے، اللہ کا تقویٰ اور اسلحو ذات بینکم، آپس کے تعلقات کی درستگی، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا اور اس پر ایمان لانا. کیوں؟ نوٹ کیجئے، بہت ہی اہم بات ہے. پہلی بات اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب فوراً دیا جائے. یہ آپ سب بھی نوٹ کر لیں، बुरा नहीं मानना चाहिए अगर सवाल का जवाब ना दिया जाए और ये कह दिया जाए कि इसका जवाब आगे आ जाएगा, क्योंकि 90% बाद में जवाब आ जाता है, लेकिन हम जल्दी करते हैं। और अगर कोई जवाब ना दे तो कहते हैं देखा आता ही नहीं था, और जवाब तो हमें मिलता ही नहीं है। तो हर सवाल का जवाब ज़ुबान से नहीं लिया जाता, तो कभी भी अगर किसी सवाल का जवाब फौरन ना दिया जाए तो उस्ताद से बदगुमान नहीं होते। दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि बाज़ औक़ात सवालों का जवाब मिल जाता है लेकिन इसको मानने की तौफीक नहीं होती। ये बड़ी बात है कि ये बड़ी बात है, सवाल का जवाब मिल गया तो मानो, लोग मानते फिर भी कोई नहीं। दसियों लोगों से पूछ चुके प्लकिंग के सवाल, बीसियों लोगों से पूछ चुके ज़बीहा खा सकते हैं गैरों का कि नहीं, लेकिन मानते नहीं हैं। तो असल में ये दुआ कीजिए कि सवालों से ज़्यादा मानने की तौफीक मिल जाए। मानने की तौफीक के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों की अख्लाक साजी और तरबियत की, और जब इनको आपस के अच्छे ताल्लुकात, तकवा और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की अहमियत का पता चल गया तो फिर यहाँ बांट तकसीम की है। यह इस्लाम के मिजाज का पता चल गया कि जो माल जिसके हाथ लग गया वो उसका नहीं होता, हर माल हर एक का अपना नहीं होता। ये हाईलाइट कीजिए जुमला, हर माल हर एक का अपना नहीं होता, इवन अगर आप उसको कमा भी रहे हैं, इवन वो आपका अपना भी है। इसमें अल्लाह ताला का हुक्म और इख्तियार मौजूद है। लोग जब तक इस्लाम की बांट पर आम ज़िंदगी में राज़ी नहीं होते तो फिर ज़िंदगी के दूसरे मामलों में भी नहीं होते। ये भी नोट कीजिए, अगर आप तकदीर के फ़ैसलों पर राज़ी नहीं है ना, तो फिर आप बाकी मामलों में भी खुश नहीं होंगे। इस्लाम ने एक बहुत खूबसूरत ज़ाब्ता दिया कि जो माल गनीमत दुश्मनों से हासिल हुआ इसको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी से मुख्तलिफ जगह पर ख़र्च किया जाए। ये है इस्लाम का इकोनॉमिकल सेटअप, माल की तकसीम। इर्तकाज़े दौलत इस्लाम नहीं चाहता, यानी माल सिर्फ चंद हाथों में आ जाए और अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो जाए, गरीब का खून चूस लो और अमीर जोंके बन जाए, इस्लाम ये नहीं चाहता। दुश्मनों से माल हासिल हुआ, अल्लाह ने बता दिया, हम बताएंगे ये कहाँ खर्च होगा। तो यहाँ फिर एक नुक्ता नोट कीजिए, आपकी अपनी मेहनत से कमाई भी ज़रूरी नहीं कि पूरी आपकी हो। हर तरह के लोग इस माल से फ़ायदा उठाएंगे, क्यों? इसलिए कि मुआशरे के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। दौलतमंद लोगों के हाथों में दौलत आती जाएगी ना तो ट्यूमर बनेगी कैंसर की तरह, इसलिए उसको फैलाने की दावत दी जाती है। तो क्या पता चला कि इस्लाम चाहता है इल्म हासिल करो। वालमु अन्नमा गनिमतुम, अब तुम्हें बताया जा रहा है कि माल की बाँट क्या है। इससे ये भी पता चलता है कि माली मामलात में ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए, शैतान का रास्ता खुल जाता है जब आप किसी भी दीन के नाम पे किसी मामले को, कल चाहे बदर के माल गनीमत की बात थी या आज किसी की है, अपने आप को इससे दूर रखिए वरना ईमान खतरे में पड़ने का डर होता है। इसके बाद देखिए बदर का मार्का शुरू होता है। आयतों को अगर आप साथ साथ लेके चल रहे हैं तो ग़ज़वे बदर का जिक्र है। बदर का मार्का जो पहली जंग थी बिल्कुल अचानक थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि इतनी बड़ी जंग हो जाएगी। वो जो एक काफ़िले के ताकुब में घर से निकले थे, सिर्फ 313 लोग थे, चंद घोड़े और चंद ऊँट थे। अल्लाह के रसूल ने किसी पर कोई सख्ती नहीं की थी, जो चाहे वो जंग के लिए निकल जाए, लेकिन वहाँ जाकर इतना बड़ा मार्का हो गया कि अपने से 3 गुना से भी ज़्यादा कुव्वत वालों के साथ लड़ना पड़ा जो जदीद असलहे से लैस थे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बहुत ही खूबसूरत नुक्ता पेश किया कि जब कभी ज़िंदगी में पहले ही से पता चल जाए कि हमारा मुकाबला सख्त हालात से होने वाला है तो हम हिम्मत हार जाएँ, यानी ज़िंदगी में बहुत सारी जो चोटें पड़ती हैं, जो हादसे होते हैं, अगर हमें वक्त से पहले उसका पता चल जाए तो हम परेशान हो जाएं, हम उसके गम में ही रोने लग जाएं। चंद दिन पहले 15 साल के एक बच्चे की मौत की जो खबर सुनी तो मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि अगर इसकी माँ को पता चलता कि ये बच्चा जो आज पैदा हो रहा है और इतनी खुशी हुई होगी, बेटा मिला, ये हुआ, पढ़ाया, उसको हाफिज़ बनाया, लेकिन ऐन 15 साल की उम्र में वो मर जाएगा, अचानक हादसे की नज़र होगा। मुझे बताइए क्या ये 15 साल वो माँ सुकून से गुजारती? नहीं गुजारती। आज सुबह भी, कल से ही बल्कि 2 दिन से ही बात चल रही है, मैनचेस्टर में हमारी एक बहुत अच्छी सिस्टर हैं, अल्लाह ताला उनको सदमों से तकलीफ़ों से बचाएं, यंग हैं खुद भी, उनका अपना शायद बच्चा और कुछ और रिलेटिव थे, मोराको गए, मैनचेस्टर से मोराको गए और वहाँ हादसा हुआ। उनका अपना बच्चा और उनके शायद भाई की बेटी दोनों क्रिटिकल कंडीशन में। यहाँ से खबर सुनकर वहाँ गए हैं माँ बाप सब दोनों के, और अब उसको वहाँ से एयर एम्बुलेंस पे जहाज़ को वापस मैनचेस्टर लाया गया, लेकिन कहते हैं कि दोनों क्रिटिकल हैं। दुआ कीजिए अल्लाह दोनों माओं के सीने ठंडे कर दे। सवाल क्या है कि अगर माँ को पता होता कि इतनी दूर जाकर इन बच्चों का हादसा होना है और छुट्टियाँ और फ़न के लिए गए तो जाने देती? तो नोट कीजिए, मुस्तकबिल की कुछ बातें हमसे छुपाई जाती हैं, इसमें हमारे लिए खैर होती है। आज भी आपके लिए खैर है जो आपको नहीं पता था कुछ बातों का। भोले बन जाइए, मत पूछिए हर बात, आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं ये। हर सवाल का जवाब नहीं पूछते, आज नहीं पता चलेगा कल पता लग जाएगा, लेकिन हम हमारे अंदर जल्दबाजी होती है। फिर इसमें एक और चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये है कि अपना मुहासबा करना है, कि जब कभी मुझे उम्मीद ना हो कि अल्लाह के रास्ते में कोई मुश्किल आएगी और फिर वो आ जाए, तो क्या मैं इस वक्त कायम रहती हूँ या भाग जाती हूँ? अभी इस वक्त भी अपने आप को पूछिए, भाग जाएं यहाँ से, उठ जाएं, निकल जाएं? नहीं, हम में से कोई नहीं निकलता, इसलिए कि हम सब अपने लिए बैठते हैं इधर। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जब अचानक मुश्किलात बढ़ती हैं तो इस वक्त बंदा अपने आप को दीन पर जमा लेता है। असल में इसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि जो जिए वो दलील पे जिए। ये भी बड़ा खूबसूरत नुक्ता है इस आयत का, कि जो जिए वो दलील के साथ जिए और जो मरे वो दलील के साथ मरे। याद रखिए, बंदा मोमिन दलील के साथ बात ना कर सके तो उसके इल्म का और उसके ईमान का ज़ोफ़ है। ज़िंदगी का असूल बनाइए, आपको कल बहुत बड़ी बड़ी अदालतें भुगतनी पड़ेंगी, और अगर दीन के काम पे आएंगे तो हर दिन नए नए फैसले, कई मुकदमे भुगतने पड़ेंगे। तो ये जुमला अपने लिए दिल की तख्ती पे लिख लीजिए, आयत 42 में से बाद में जाके आपने पढ़ना है। जितनी भी आयतें हमने की हैं ना इन 10 पारों में, आपने इनकी अरबी लिखनी है, या अब आपकी असाइनमेंट्स दिन ब दिन मुश्किल होती जाएंगी। आज आपका 10वां पारा पूरा हो रहा है, पीछे से शुरू कर लीजिए अपनी दोहराई। बुक के ऊपर आयतों के नंबर लिखे हैं, अपने प्यारे प्यारे हाथों से इन आयतों के अरबी के टुकड़े लिख कर रखे, ताकि आपको अरबी लिखनी आए। तो इस आयत के लिए क्या लिखेंगे आप? लियहलिका मन हलका अम बैजीना व यहया मन हय्या अम बैजीना। अल्लाह करे जल्द वो वक्त आए कि आप इसको बग़ैर उर्दू के समझें, अभी तो मैं आपकी मदद करती हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं, ताकि हलाक हो जो हलाक हो वो दलील पे हलाक हो, और जो जिए वो दलील पे जिए। तो अल्लाह हमें दलील का आदी कर दे, कुरान सुन्नत की दलील हमारे लिए काफ़ी है हर बात के लिए। तो अल्लाह ताला हमें दलील की ज़िंदगी चाहते हैं, बग़ैर दलील के कुछ नहीं होता, बेकार बात है। हम किसी को सारा दिन कहते हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। दलील दीजिए, करके दिखाइए, अमली मोहब्बत दिखाइए, अगले को खुद पता लग जाएगा आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, कहने से क्या होता है, करके दिखाइए। किस दलील पर जिया कि अल्लाह ताला का दीन गालिब आकर रहेगा? अगर हालात ना साजगार भी होंगे तो होने दो, मैं तो अपनी जान उसी पर दूंगा। इसी को शहादत कहते हैं। शहीद असल में अपनी जान का नजराना पेश करके इस बात को साबित करता है कि अल्लाह ताला का दीन गालिब होकर रहेगा। मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन अल्लाह ताला का दीन गालिब रहना चाहिए। इस बारे में हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या काम करें कि अल्लाह की मदद आए। अल्लाह की मदद मैदान जंग और अल्लाह के रास्ते में तब आती है जब इंसान के अंदर ईमान मौजूद हो। इसके साथ साथ हम अपना मुहासबा भी करते हैं कि आज के मुसलमानों के अंदर ईमान का वो मतलूबा दर्जा है जो अल्लाह ताला की मदद को लाता है। अपने आप से पूछिए, ये तो आप खुद अपने दिल से पूछ लें, मेरे काम कैसे होते हैं? हुए हुए काम रुक जाते हैं या नामुमकिनात को अल्लाह मुमकिन बना देता है, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल की सूरत दे देता है? याद रखिएगा, नसरुन मिनल्लाह, जो अल्लाह की मदद है ना वो ईमान के साथ है। आपका मेरा ईमान जितना अल्लाह पे बढ़ता जाएगा ना, ये मान बढ़ता है, और मान बढ़ेगा तो मदद बढ़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से ये गुमान है कि उसने हमेशा अपनी शान से मदद की है हर मामले में। हमारा ईमान तो इस दर्जे का है नहीं है जो अल्लाह की मदद को लाए। دوسری چیز محاسبے کی نوٹ کیجئے، ثابت قدمی۔ ہوتا کیا ہے کہ عام حالات میں ہم بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن ذرا سے حالات ناسازگار ہوتے ہیں تو اس کے اندر ثابت قدمی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جن کے پاؤں خود نہیں لگے ہوئے وہ دوسروں کو سہارا کیسے دیں گے؟ ضرورت ہے کہ مسلمان خود ثابت قدم ہو جائیں۔ نوٹ کیجئے، دیکھیے، کیل خود دیوار میں ٹھکا ہوا نہ ہونا تو آپ اس پہ گھڑی نہیں لگائیں گے، وہ گھڑی بھی گرے گی اور کیل بھی گرے گا۔ آج ہم مسلمانوں کو ٹھکنے کی ضرورت ہے، اور ثابت قدمی نہیں ہے تو آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ پریڈکٹیبل ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے آپ کرتے ہیں۔ ہیں آپ بڑے کوالیفائڈ، سوری، نو ویکینسی فار یو۔ ایسے لوگوں کے لیے جو موڈی ہوں، سست ہوں، فوکسڈ نہ ہوں، ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو، سب کو خوش رکھو، اللہ کہتا جاؤ سب کو کر لو، میں تم سے ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود ٹھکیں، تو اپنے پاؤں خود بنائیے، دوسروں کو سہارا دینا تو ثابت قدمی دکھائیے۔ تیسری چیز دیکھیے، اللہ کا ذکر، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ میدان جنگ میں بھی جا کر اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ کرام میدان جنگ میں جا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، دن کے وقت وہ اللہ کے حکم پر لڑتے تھے اور راتوں کو تہجد میں قرآن پڑھتے تھے۔ اور کسی کا جملہ ادھر خالی جگہ میں اپنے ہاتھوں سے لکھ لیجئے، کلاف نام کے کمانڈر نے ایک گواہی دی تھی مسلمانوں کے لیے کہ ہم فرسانم بن نہار، دن میں وہ شخص سوار ہے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے، لیکن وہ رحبانم باللیل، راتوں کو راہب بن جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ آئیے ذرا آپ اور میں بھی اپنے دن اور اپنی راتوں کو چیک کریں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ذکر ہر وقت۔ سب سے آسان نیکی جو آپ اور میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وہ ذکر کی نیکی ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کی اطاعت۔ ہر معاملے میں اللہ کی خوشی، اللہ کے دین کو اپنی خوشی بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول کی زندگی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ آپس میں جھگڑے نہ کرو، اختلاف نہ کرو، صبر کرو، اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں نمایاں نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان ان چیزوں پہ غور کریں، اگر کچھ نہ کر سکے تو کم از کم امت کو ایک وحدت میں تو پھرو سکتے ہیں۔ امت کے اختلاف سے انسان کمزور ہو جاتے ہیں، پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، دشمنوں کے دل سے روب نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمارا روب واپس لے آئے۔ اور ساتھ ہی کہا، صبر کرو، اطاعت پر صبر کرو، نماز قائم کر کے صبر کا ثبوت دو، اور منع کی ہوئی چیزوں سے رکو، گناہوں سے رکو، برائیوں سے رکو۔ بات صرف یہاں نہیں ختم ہوئی، بلکہ آگے کیا کہا، کفار کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی تشبیہ اختیار کی، یعنی ان کے طور طریقے اختیار کیے، بس وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں چیک لسٹ میں اپنے ڈال لیجئے، ایک ایک کر کے گنتے جائیے، کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، آیت 47 میں کفار کے لشکر، ابو جہل کے لشکر کی طرف اشارہ ہے۔ جب اس کو میدان بدر کی طرف بلایا گیا تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا، ساتھ گانے بجانے والی عورتیں بھی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ سب تم کس کے لیے کر رہے ہو، یہ کس لیے لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا، مسلمانوں سے جیتیں گے، پھر اس فتح کا جشن منائیں گے، جشن کے اندر شباب کباب ہوگا، اور یہ عورتیں ہمارے لیے گائیں گی۔ اللہ نے اس کی بات یہاں پیش کر دی کہ دیکھو، بترن، بتر کے لیے، دکھاوے کے لیے گھروں سے نکلتے ہو۔ یہ ہے مین آیت اس بارے کی، جس میں بتر کا لفظ ہے اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ آج بھی جو قومیں جاہل ہوتی ہیں فتح کے جشن میں ایسی چیزوں کو شامل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پارے کا عنوان بتر ہے، تو تھوڑا سا بتر کو سمجھنا پڑے گا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تھوڑا سا دیکھیے بتر کے، اردو میں ہم بولتے نہیں ہیں یہ لفظ نا، دکھاوا اور چیز ہے، بتر اس سے تھوڑا سا ہٹی ہوئی چیز ہے، بتر بترو سے ہے۔ بتر کیا ہے کہ اصل میں دیکھا جائے تو بتر وہی ہے جسے اردو میں دکھاوا کہتے ہیں، ریاکاری ہے، زیادہ سے زیادہ ساز و سامان جمع کرنے کی بے لگام خواہش، ایکسیسو ڈیزائرس۔ حد ہی کوئی نہیں، کپڑوں کی حد کوئی نہیں، جوتوں کی حد کوئی نہیں، کھانے کی حد نہیں، گروسری کی حد نہیں، ہر چیز ایسے لگتا ہے گھر ایک سٹور بنا پڑا ہے۔ اسی طرح بتر کیا کہ دولت کمانا اور اس کو خرچ کرنا زندگی کا مقصد بن جائے، یعنی پرپس آف لائف کیا ہے؟ دولت کمانے میں مرد لگے ہوئے ہیں اور اجاڑنے میں عورتیں لگی ہوئی ہیں. پھر تیسری اس کی تعریف لکھی ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا مرض بتر کہلاتا ہے، لیو بیونڈ یور مینس. پیچھے بھی بات کی تھی نا، وہی جملہ ادھر بھی لکھ لے. پہلے کہتے تھے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، آج کہتے ہیں قرضے لے لے کر پاؤں پھیلاؤ. اب جو چادر والی ہے نا بات، ذرا آج اس کو پورا لکھے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. جی، آج تو آپ دیکھ لیجئے کریڈٹ کارڈ کلچر کا دوسرا نام ہے بتر، قرضے لے لے کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. ہر وقت انسان اپنے آپ کو خوش کرنے میں لگا رہے، خود کو سوچنا اپنے معیار زندگی کو پوجنے کا نام بتر ہے. اگر ایک ایک پہ 1 2 3 کر کے لکھتے جائیں، آپ کے 6 7 تعریفیں آ گئیں بتر کی. تو کیا پتہ چلا کہ بتر اصل میں مقصد کو بھول کر بس روپیہ کمانے بگاڑنے کے نام پر آ گیا. دیکھیے، ریاکاری کئی چیزوں میں ہو سکتی ہے نا، دکھاوا، علم کا دکھاوا، تقوی کا دکھاوا، لیکن بتر کا خاص طور پہ تعلق مال کے ساتھ ہے. جب زندگی کا مقصد ہی معیار زندگی کو بڑھانا ہو، جب جنون کی حد تک یہ دنیا انسان کے حواس پر طاری ہو جائے، تو یہ چیز بتر کہلاتی ہے. اور اس چیز میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہیں اشتہارات. ہر ایک چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اب دیکھیے، رال ٹپکی ہوئی ہے، بسکٹ کا ڈبا ہے تو پکڑ کے پاگل ہو رہے ہیں، ٹوتھ برش ہے تو آنکھوں میں چمک ہے، ناچتے پھدکتے. چند منٹ کی آپ صرف ایڈورٹیزمنٹس دیکھیے، آپ کو بتر کی ساری وجوہات سمجھ آ جائیں گی کہ اصل میں ہر وقت اشتہار بڑھانا، جس کو اردو میں کہتے ہیں رال ٹپکوانا، جب لوگ اصل مقصد کو چھوڑ کر صرف دکھاوے کی زندگی بسر کرنے لگیں، ان کو ایسے لگنے لگے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تو یہ یاد رکھیں نقصان دہ ہوتا ہے. پھر بتر جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے نا، تو تفاخر میں بدل جاتا ہے، تفاخر، فخر. یہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ذرائع سے بڑھ کر خرچ کر لیتا ہے، یعنی آمدن سے زیادہ خرچ کر لینا بتر ہے. پھر اگر خرچ پورا نہ ہو تو قرض لے کر اور زیادہ خرچ کرنا. تو بتر ہی سے کریڈٹ کارڈ کا کلچر وجود میں آیا. خوشیاں ایسے پوری کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو کارڈ لے لیں. وہ کہتے ہیں نا، سیدھی انگلیوں کی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی سے نکال لو. نتیجہ کیا ہوا کہ زندگی بالکل دوسری طرف نکل گئی. برانڈڈ چیزوں کا جنون، اپنے آپ کو دوسروں سے آگے بڑھانا، یہ ہے زندگی. یہ جو برانڈ کا لفظ نکلا ہے نا پچھلے 4 5 سال میں، یہ بتر کی ایکسٹریم ہے. اپنے بچوں کو بچپن سے خدا کے لیے برانڈ کانشیس نہ بنائیں. آج تو چھوٹے چھوٹے کرتے برانڈڈ ملتے ہیں، چھوٹے نیو بورن بیبیز کے 2 2 ہزار روپے کے. یہ بچہ کیا ہوگا، آپ تو بچوں کے بستے، ربڑ، شارپنر، کہیں مکی ماؤس تو کہیں فلاں، کیا دوسرے بچے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ چلے، آپ کو اللہ نے موقع دیا، باہر گئے، 4 چیزیں لے آئے. وہ بچہ بیچارہ، غریب بچے جن کے پاس روٹی بھی پوری نہیں ہے، ان کے سامنے جب وہ کپڑے جوتے پہن کے جائے گا تو کیا لوگ اس کو خوش ہو کے دیکھیں گے؟ یاد رکھیے، سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم ایسے لوگوں پر زندگی مشکل کرتے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. یہ آیت آپ نے سورۃ طٰہٰ سے ڈھونڈ کے عربی میں لکھ کے چپکانی ہے اپنے اسائنمنٹ میں. اس کی حالت کیا ہوگی کہ اس کی کبھی پوری نہیں پڑے گی. ایسے لوگ قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، بلائنڈ. جی، آج کسی کو لگے کہ اگلے سال اس کی آنکھیں چلی جائیں گی، سوچیے کیا کیفیت ہوگی. پھر اسی طرح سورۃ قصص کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بسیں، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی جو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو اپنی معیشت پر بڑی پھلتی پھولتی تھی. یہ بتر ہی تو تھا قوم فرعون کا، کیسے ان کے گھر پڑے رہے اور وہ خود دریا کی لہروں کے سپرد کر دیے گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بتر آتا کیسے ہے؟ عملی طور پر کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں. بتر اگر خوشی منانے میں دیکھنا چاہیں تو وہ ایسے کہ خوشی خوشی نہیں رہتی، وہ سیلیبریشن میں بدل جاتی ہے. شادی کی اتنی رسمیں بنا لی ہیں کہ خوشی ختم ہو گئی. جی بالکل، आज हम तो पिक्चराइज करते हैं शादी को। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, फूल नहीं आए। नहीं 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 अभी दुल्हन नहीं आई। घंटों लोगों को खड़ा कर रहे हैं इंतज़ार में, आर्टिफिशियल खुशियाँ। चले शादी डिसिप्लिन तो हो गई वीडियो मूवी के नाम पे, लेकिन जज्बे तो ख़त्म हो गए। सेलिब्रेशंस, आप देखिए कि आम दावत किसी की भी होती है, खुशी से खिलाइए पिलाइए। आज क्या कि एक ही दावत है, ये छोटे की सालगिरह है, बड़े ने कुरान ख़त्म किया, हस्बैंड वाइफ की एनिवर्सरी है, यानी मुराद चारों के लिए गिफ्ट्स लेकर आओ। आज आप देखिए किसी के घर जाते हैं आम भी, गिफ्ट लिए बगैर जाते ही नहीं, कितनी शर्म की बात है। हो खाली हाथ जाऊँ तो सेलिब्रेशन है। एक होता है आपका दिल मचला किसी को कुछ देने को, आप जब मर्जी दें, मौका नहीं देखेंगे, आप खुशी से देंगे, ढूंढेंगे मौका मिले और मैं दूँ। और एक ये है कि अब क्या करें, डिब्बा लेके जाना होगा। और ये क्या है, नो बॉक्सेस प्लीज, यहाँ तो मुझे नहीं पता ये भला आई है कि नहीं। कहते नो गिफ्ट बॉक्सेस, यानी मीन कैश दे दो। और या फिर बड़े बड़े स्टोर्स में जाके चीज़ें लिखाते हैं, लोगों को कहते हैं जाएं वहाँ हमारे नाम पे जो चीज़ें उसमें से कुछ भी ख़रीद दें। तो बहरहाल रस्मों की बात, देखिए रस्में तो बनी, बढ़ते बढ़ते मौत के अंदर भी बतर आ गया। लोग देखते हैं कि इनके मुर्दे कहाँ दफनाए गए, ये फलां छोटे से कब्रिस्तान में, ये मियानी शरीफ में, या डिफेंस क्लिफ्टन में, ये कहाँ दफनाए हैं। और फिर कहते नहीं हमारे मुर्दे तो डिफेंस में, यानी मीन वहाँ भी उनकी बड़ी कोठियाँ अंदर बनी हुई। नहीं हम तो वो फलां जगह पे नहीं दफनाते, वो तो बड़ा पब्लिक वाला जो कब्रिस्तान है। अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यानी लोग अपने मुर्दों पे फ़ख्र करते हैं। रस्में देख लीजिए, 40वें के कार्ड छपते हैं, उधर मैयत उठती है, उसके बाद जो खाना खिलाया जाता है उसमें भी कोरमा बिरयानी और जर्दे पकते हैं। क्या ये बतर नहीं है, गले से उतरते है? एक बंदा अपने हिसाब किताब दे रहा है खबर में और आप कोरमे बिरयानियाँ उड़ा रहे हैं, ज्यादती है। फिर देखेंगे कि अपनी बच्चों में माँ बाप की तरफ से कैसे, जिसको आप कहें कि खामोशी के सब बतर आ जाता है। वो क्या, बचपन से महंगी चीज़ें ख़रीद कर देते हैं, कीमती मोबाइल, इनके पेंसिल बॉक्सेस और दूसरी चीज़ें। शुरू से माँ बाप बच्चों को इतना हसास कर देते हैं कि तुम ये खा सकते हो और ये पहन सकते हो, बाद में सारी ज़िंदगी इनका हाल ख़राब रहने लगता है। इसी तरह आम तौर पर जो बतर नज़र आता है वो तोहफ़ों के नाम पर आता है। लोग इस चीज़ को नोट करते हैं कि ये आम दुकान से लेकर तोहफ़ा दिया गया है या ब्रांडेड जगह से दिया। पहले लोग जोड़ा देखते थे, अब मोहर देखते हैं किधर से आया है। बाज़ लोग कीमत वाला कार्ड ही नहीं उतारते गिफ्ट देते हुए, ताकि बता सकें कि कितने का ख़रीदा है। जब ज़िंदगी का मकसद ही ख़रीदना और दिखाना हो जाए तो समझ लीजिए वो कौम बतर का शिकार हो चुकी है। इसी तरह दावतों के नाम पर बतर, के इतनी किस्म की डिशें कोई खाए ना खाए सिर्फ दिखाने के लिए। वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और सच बताइए बफे सिस्टम में जितने खाने अगर एक एक चम्मच भी कोई खा ले तो उसका हाल क्या होगा। अब आप कहेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो ज़रा सा देखिए कि इसका नुकसान क्या है। सबसे पहले माशरे के अंदर भेड़ चाल शुरू हो जाती है, हर बंदा दूसरे के पीछे जा रहा होता है। दूसरे ये कि जितना भी कमाए वो इसके लिए पूरा नहीं पड़ता, माशरे और ज़िंदगी का सुकून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, रिश्तों में बिगाड़ पैदा हो जाता है। बतर के साथ ज़िंदगी में मेहनत और तगोदो बढ़ जाती है, क्योंकि जो बंदा अपनी कुव्वत से ज़्यादा काम करेगा वो थोड़ी ही देर में थक जाएगा, इसके नतीजे में वो काम नहीं कर सकेगा जो इसे करना है। बात समझ गए, आज क्यों डबल जॉब्स हैं, डबल ड्यूटी, नाइट शिफ्ट, वीकेंड, वीक डेज, वजह पूरी नहीं पड़ती। तो आज मर्द बेचारे मशीनें बन के कमाते हैं और औरतें बस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करती हैं। चलिए ये तो बीमारियाँ थी, इलाज क्या है। नंबर एक, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जो तूने मुझे दिए इस पर कनात दे दे। मस्तून दुआ में बड़ी प्यारी दुआ, आपके लॉन्ग कोर्स में आपको इंशाल्लाह मस्तून दुआएँ सिखाएंगे। अल्लाह के नबी की एक दुआ, अल्लाह मुझे कनात दे दे, कन्ने नी जो दी उस पर कनात दे। अल्लाह माशनी मिसकीनन वाम इतनी मिसकीनन, अल्लाह मुझे मिसकीनी के साथ ज़िंदा रख, मिसकीनी से मार। तो दुआ कीजिए। नंबर टू क्या है कि दुनिया की बेसबाती को नज़र में रखिए, कितना कुछ जमा कर रही हूँ छोड़ कर चली जाऊँगी तो कैसा लगेगा, यानी दुनिया ख़त्म होने वाली है इस पर क्या लगाऊँ, छोड़ो। वही बात है कि आप तो इस दुनिया में दिल ही नहीं लगता, क्योंकि एक तरह वाले नासी हिसाब हम वह हम फी गफलत मोरे दून वाली आयत आ चुकी है। अगली चीज़ क्या है, अगले टिप लिखिए, जन्नत की नेमतों पे नज़र रखें कि अल्लाह ने वहाँ कितना कुछ रखा हुआ है। और यहाँ एक गलत फहमी भी दूर कर लेनी चाहिए, इसका ये मतलब भी नहीं कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, पहन सकते। तीन चीज़ें हैं, आराइश, जुबाइश और नुमाइश। आइए ज़रा तीनों का फ़र्क देखें। आराइश क्या है कि अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, आप नरम गद्दा ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी ख़रीद सकते हैं, यानी इस नाते से ये तमाम चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं है, इस्लाम मना नहीं करता। कंफर्ट लीजिए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब आपके एसी नहीं लगाना, हम बड़े नेक हैं और मदरसों में एसी, अस्तग़फिरुल्लाह, बंद होता है ना जब बाद में टर्न पे आप देखते हैं कि आप सीने होते हैं, घरों में एसी हैं या तो होता ही ना तो हमें मसला भी ना लगता, जब घरों में एसी, गाड़ियों में एसी, मॉल्स में एसी, तो क्या इस्लामिक इंस्टीट्यूट में एसी नहीं है? और आपको तो शायद अभी इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यहाँ ये एसीज जो आपके लिए चल रहे हैं इस वक्त तो एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इसको किसी से लिया गया, आप देखते हैं एंड पे बंद हो जाते हैं और गर्मी लगती है उसके बाद, और आपका अपना ट्रांसफार्मर कितना उस पर माल लग रहा है, कितना लगेगा, दुआ कीजिए अल्लाह सबाब बना दे, आप भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, फिर आपके इसी दिन रात भी चल सकते हैं और जहाँ दिन रात भी काम हो सकता है। सिर्फ ये देखिए कि आपके मेरे रिसोर्सेज दीन की नशो इशात में बढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह इसकी खैर है। तो पहली चीज़ क्या है, आप आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी चीज़ है ज़िबाइश, यानी हम अपने लिबास को सजा सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं, तो ये भी जायज़ है, कोई बुरी बात नहीं, कपड़े तो पहनते ही हैं ना, तो कोई ज़रूरी है कि रंग बिरंगे पहने, शलवार और कमीज़ और दुपट्टा और ज़रूरी उसको कहीं से टुक लगा लें क्योंकि हम नेक बहुत हैं, गलत बात है। आपको आसमान में खूबसूरती दिखती है, ज़मीन पर दिखती है, फूल में दिखती है, तो आपके कपड़ों में क्यों नहीं आ सकती, ये भी जायज़ है, पूरे यकीन से अच्छे कपड़े पहनी है। हाँ, लेकिन तीसरी चीज़ जायज़ नहीं है और वो नुमाइश है, और बतर जो है असल में नुमाइश का ही दूसरा नाम है। अपने लिए पहनी है, तहदीस नेमत के लिए पहनी है, अपने आप को मोर कंफर्टेबल देखने के लिए पहनी है, रिलैक्स्ड होने के लिए पहनी है, फ्रेश अप होने के लिए पहनी है, सदका जारिया के लिए पहनी है, किसी को सवाब देने के लिए पहनी है, किसी की खुशी के लिए पहनी है, लेकिन इसलिए नहीं पहन सकते कि पहन के मैं लग के आ रहा हूँ, शो पीस नहीं बनना आपने। हदीस में आता है कि जो इसलिए लिबास पहनता है कि अपने आप को दूसरों की नज़रों में बड़ा करे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे, इलाज की ज़रूरत है। एक अगली टिप नोट करें, सूरत कहफ जो हर जुमे को पढ़ाई जाती है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इन्नल जाइलू नमा अलै हसई दंजरुजा, हम इस ज़मीन की सारी चीज़ों को ऐसे चटियल मैदान बनाने वाले हैं। सूरत कहफ के मज़ामीन पे नज़र रखिए, इससे फ़ायदा होगा। हर जुमे को पढ़ने में शायद यही हिकमत थी। फिर इसका एक और इलाज लिखिए, महीने में कम अज़ कम 3 रोज़े रखें, क्योंकि रोज़ा इंसान के नफ्स को दबा देता है, यानी भूख के साथ बतर का इलाज कीजिए। फिर एक और कारामत चीज़ क्या है कि सब औरतें अपने घर की लिस्ट बनाएं और घर के अंदर इन चीज़ों की लिस्ट बनाएं कि जो अगर मैं ना ख़रीदती तो मेरा गुजारा हो सकता था। यकीन करें, किचन से लेकर आपकी वार्डरोब तक आपको बीसियों चीज़ें मिलेंगी जो बेकार हैं। बेकार से मेरा ये कि गुजारा तो हो सकता था, कोई ज़रूरी है 20 जूतों के जोड़े हों? कोई ज़रूरी है कि 6 किस्म की ही आपके पास डिनर की प्लेटें हों? ज़िंदगी का एक असूल बनाएं कि जब बाज़ार जाऊं सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेकर आऊंगी। फिर एक और इंस्ट्रक्शन लीजिए कि जब बाज़ार जाएं तो कम पैसे लेकर जाएं और क्रेडिट कार्ड घर छोड़ कर जाएं, क्योंकि कार्ड इस्तेमाल करते हैं पता ही नहीं चलता उस वक्त, तो ख्वाहिशों में ऐसे दीवाने हुए होते हैं, बाद में जब बिल आता है तो मुश्किल होती है, और अल्लाह ना करे कि सूद चढ़ गया तो लेने के देने पड़ गए। फिर इसी तरह एक और काम कीजिए, बढ़ना है ना, आगे आगे बढ़ने के लिए हम करते हैं ना ये सब बतर, तो नेकियों में आगे बढ़िए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कैसे कर सकती हूँ, ये कीजिए, आप अपने जन्नत के कपड़े बनाइए, जन्नत के घर को सजाइए, संवारिए, वहाँ के खाने बनाइए, पकाइए। फिर इसी तरह से एक और टिप लीजिए, नियत करें कि मैंने सेल से कभी कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी सिवाय इसके जिसकी ज़रूरत हो। ठीक है, वो असल से सस्ती मिल रही है, लेके रख लीजिए, अगले साल फिर वाकई आपने रियल प्राइस पे नहीं ख़रीदने और वही सिलवाने हैं। हम सेल में ज़रूरत से ज़ायद लेते, कहते लेने देने में काम आएंगे, और अपने लिए फिर अगले साल नए डिज़ाइन लेने चल पड़ते हैं, ये गलत है। फिर आप देखिए मौत का मंज़र जहन में लाएं, कितना कुछ होगा जिन्हें छोड़ कर दुनिया से जाऊंगी। और फिर ये सोचिए कि आपके जाने के बाद लोग जब आपकी अलमारियाँ खोलेंगे, आपका घर देखेंगे, कहेंगे क्या कीड़ कबाड़ जमा किया हुआ था, कितनी शर्म आएगी उस वक्त हमें, अगर हम सामने हों और हमारे पोटले खुल रहे हों, कितनी शर्मिंदगी हो। कभी आप एयरपोर्ट पे देखें लोगों के हैंड कैरीज या दूसरा सामान खुल जाए, शर्मिंदा हुए फिरते हैं, इतनी चीज़ें इधर से उधर गिर रही हैं, पड़ रही हैं और शर्मसार हैं। तो क्या बनेगा उस वक़्त जब हम अपनी चीज़ों की वजह से शर्मिंदा हो रहे होंगे, शर्मसार हो रहे होंगे। तो क्या करना है आपने, मैंने ऐसे वक्तों में ये सोच लेना है कि मैंने उस दिन की शर्मिंदगी से बचना है। फिर अगली टिप लीजिए, हिसाब को याद कीजिए, हिसाब तो देना पड़ेगा। सुम्म लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन फिर तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। ये सारे सवाल जवाब आपके मेरे लिए दुनिया में आसान हो जाएं तो आखरत में तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह सुबहान तआला कुछ ना कुछ आसानी का मामला कर ही देंगे। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पे गौर करते जाएंगे आपका दिल खुलता जाएगा। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे लिए इस सारी बातों को मानना समझना आसान कर दे। इतना ज़्यादा इस चीज़ को अपने लिए लीजिए, गौर कीजिए, शऊर लाइए, नहीं लेनी, नहीं करूँगी, नियत कर लीजिए इस गर्मी में कुछ कपड़े नहीं बनाऊँगी, इस सर्दी में कुछ नहीं बनाऊँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, और तसव्वुर में देखेंगे अमाल नामा तुल रहा और आपका वज़न ज़्यादा हो रहा है, कहाँ फेंकेंगे, किसको देंगे उस वक़्त, तो फ़िक्र लग जाएगी। फिर इसके अलावा ये सोच अपने दिल से निकाल दीजिए कि मेरी गाड़ी और मेरे कपड़ों की वजह से लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, कोई नहीं करता, बेकार बात है, वो जल उड़ रहे होते हैं आपकी चीज़ें देखकर। फिर इसी तरह लोगों का बेबस होना सोचिए कि ये हैं क्या जिनकी नज़रों में मैं उछलना चाहती हूँ, लोगों को उनके मुकाम से ज़रा सा नीचे लेकर आइए। ये सारे मुझे अच्छा समझ भी जाएंगे, ये मेरी तारीफ़ें कर भी देंगे, लेकिन इनकी क्या अहमियत है, वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, क्या होगा अगर ये सब मेरी तारीफ़ करेंगे, इसके मुकाबले में अल्लाह की ज़ात आपसे खुश होती है तो इसका ज़्यादा मुकाम है। इस तरह एक बहुत अहम चीज़ कुरान पाक से जुड़ने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें।